ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम कैंटो स्कंद एक अध्याय आठ श्लोक क्रमांक 16। मामं स्थयेतदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमेच्युत यैदं मायया देव्या सृजत्यवत्यहन्त्यजः मामं स्थायेतदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमेच्युते यैदं मायया देव्या सृजत्यवत्यहन्त्यजः स्थयेतदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमेच्युते यैदं मायया देव्या सृजत्यवत्यहन्त्यजः। वैष्णवीस सोचो ही निश्चय ही एतद् यह सब आश्चर्यम् आश्चर्यजनक सर्व समस्त आश्चर्यमये परम आश्चर्ययुक्त अच्युते अच्युत में यह जो इदं यह सृष्टि
मायया
उनकी शक्ति द्वारा
देव्या
दिव्य
सृजति
उत्पन्न करता है,
अवती
पालन करता है,
हन्ति
संहार करता है,
अजह
अजन्मा। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे स्वयं अजन्मा होकर अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। तात्पर्य, जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं, अतएव वे सदा हमारी कल्पना से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा परम पूर्ण है। भगवान शत प्रतिशत पूर्ण है, लेकिन अन्य लोगों में यथा नारायण, ब्रह्मा, शिवा, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बड़ा है, वे अद्वितीय है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयिहं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज श्री प्रभुपाद जी के संन्यास का दिन है। विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, उन्होंने भी आज के दिन संन्यास लिया है। और आज का तात्पर्य है वो बहुत ही उचित है उसके लिए, सर्व आश्चर्यमय अच्युते। इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो भगवान अच्युत है सर्व आश्चर्यों से पूर्ण है, आश्चर्यमय। मये मतलब संपन्न होना, आनंदमयो अभ्यासात। परम सत्य जो होता है उनको आनंद में, मतलब आनंद से भरे हुए, आनंद से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भगवान है मां ममस्ता ये तदाश्चर्य कि सुखदेव सुत गोस्वामी नैमिषारण्य शौनक आदि ऋषि उनको बता रहे हैं कि भगवान ने क्या किया, जो ब्रह्मास्त्र आया है जिसको प्रतिकर करना लगभग नामुमकिन है, तो उसका न केवल यहाँ पे दो चमत्कार भगवान ने किए। एक चमत्कार था कि जो ब्रह्मास्त्र इसका प्रतिकार करना लगभग नामुमकिन है, उसका प्रतिकार किया उन्होंने। पर उससे बड़ा बड़ी बात है कि जो ब्रह्मास्त्र तेजी से आ रहा था, उत्तरा पाही पाही कृष्ण को बुला रही थी, उस समय ब्रह्मास्त्र ने आके, विश्वाचार्य ठाकुर बताते हैं कि जो उनके गर्भ में परीक्षित था शिशु उसका वध कर दिया। पर भगवान ने अंदर प्रवेश करके पुनः परीक्षित को जीवित कर दिया, और न केवल जीवित किया, परीक्षित को दृष्टि भी दी कि देखे कैसे भगवान उनको बचा रहे हैं। और फिर भगवान ने दर्शन दिया, भगवान एक पल में अगर चाहे तो अपनी इच्छा से भी वो ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार कर सकते थे, पर भगवान ने एक रूप धारण किया, जो रूप परमात्मा का रूप है वैसे ही रूप उन्होंने धारण किया, और वे उस गर्भ में प्रवेश किए, और प्रवेश करके उन्होंने उसका प्रतिकार किया। ऐसे क्यों किया? ताकि परीक्षित देख सके। जब वो बालक शिशु परीक्षित ने देखा तो फिर वो जो स्मृति थी जीवन भर उनके साथ रही, कौन थे वे भगवान जो मुझे बचाने के लिए आए थे। और वही भगवान की खोज वो जीवन भर करते रहे, और जिस तरह से अभी जो ब्रह्मास्त्र आया और उससे भगवान ने स्वयं बचाया, वैसे ही भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन आएगा कि तक्षक का एक अस्त्र, रक्षक रूपी एक अस्त्र आएगा जो परीक्षित का वध करना चाहेगा। तो क्या तभी भगवान ने संरक्षण नहीं किया? तभी भी भगवान ने संरक्षण किया, तभी भगवान भागवतेर कथा के रूप में अवतार लेके उन्होंने परीक्षित महाराज का संरक्षण किया, कि शरीर का तो विनाश अनिवार्य है, पर भगवान ने तभी जो उनको अपनी कथा का स्मरण उसमें लीन करा दिया। तीसरे स्कंद में कपिल देव जब माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं, तभी वो बताते हैं कि मदाश्रया कथा मृष्टा शुण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसहा। वो बताते हैं कि मदाश्रया कथा मृष्टा, कि जब भक्त मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, कैसे? कथा मृष्टा, मृष्टा मतलब बड़े आनंद से भरी हुई कथा होती है, और कैसे ऐसा आश्रय ग्रहण करना है? शुण्वन्ति कथयन्ति च, श्रवण करना, कथन करना, और उससे क्या होता है? तपन्ति विविधास्तापा, इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के ताप है जिनसे जीवात्मा जो है तप जाता है। तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः, नैतान् वो मेरे भक्त को परेशान नहीं करते, मद्गत चेतसः, मद्गत क्योंकि उसने मैं अपनी जो चेतना है मुझे अर्पण कर दी है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि इस अगर दुनिया में दुख है तो भक्त दुखी ना होगा? क्योंकि मद्गत चेतसः। इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं कि अगर बाहर बहुत गर्मी है, तपन्ति, पर कोई व्यक्ति किसी मैं पहले भी उदाहरण दिया था, कोई एयर कंडीशन रूम में आ जाता है, तो फिर बाहर सारी गर्मी है पर अंदर उसको बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं होती। तो उसी तरह से हम जब भगवान का स्मरण करते हैं तो मान लीजिए हमें कृष्णा कंडीशन रूम में प्रवेश कर लेते हैं, तो जैसे ही हम वो भगवान का स्मरण करते हैं तो तपन्ति विविधास्ताप नैतान् मद्गत चेतसः, पर हम वो उसमें प्रवेश करने की जगह पे बाहर वो गर्मी से झगड़ते रहते, तुम इतनी गर्मी क्यों हो यहाँ पे, तो आ जाओ अंदर, आपको गर्मी नहीं लगेगी। इसे इंग्लिश में कहावत होती है, डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग गॉड इज, कि अपने समस्याओं को आप भगवान को बताओ, भगवान मेरी ये समस्या है, वो समस्या, इतनी सारी समस्या है, अरे अपने समस्याओं को बताओ भगवान कितने बड़े हैं। भगवान का आश्रय ग्रहण करेंगे तो फिर सारे समस्याएं जो रहेगी पर हमें उद्विग्न नहीं करेगी। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनंश्यसि। 18वें अध्याय भगवद्गीता के 58वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, मच्चित्ता अगर आप मेरी चेतना में लग जाते हो, सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, आप तरण कर लोगे, कैसे? मत प्रसादात् सर्व दुर्गाणि, जो भी समस्या है उससे आप पर चले जाओगे। अगर नहीं करोगे ऐसे, अगर गर्मी बाहर है और एयर कंडीशन रूम में नहीं आओगे, तो अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनंश्यसि, अगर अहंकार के बल पे आप मेरा शरण नहीं लोगे तो फिर विनंश्यसि, आप गुमराह हो जाओगे। तो भागवतम इस प्रसंग से हमें दिखा रहा है कैसे भगवान अपना आश्रय प्रदान करते हैं। और ये दो आश्चर्यजनक कार्य थे, जो ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार करना और जो मृत हो गया उसको पुनर्जीवित करना, तो ये दोनों बड़े आश्चर्यजनक है। पर फिर भी सुध गोस्वामी बता रहे हैं कि मा मम स्थये तद आश्चर्यम, इसमें आप कुछ आश्चर्य की बात मत करो, क्योंकि भगवान सारे आश्चर्य से भरे हुए हैं, सर्व आश्चर्यमये चिते। और उनका आश्चर्य क्या है वो उदाहरण दे रहे हैं इसके लिए, कि ये एतद माया देव्या, कि जो माया की शक्ति तो यारो क्या करते हैं इस भौतिक जगत के सृजत्य अवत्य हंत्य अजह, कि वे भगवान उनको कुछ प्रभाव नहीं होता है पर वो इस भौतिक ब्रह्मांड का निर्मिति करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करते हैं। अगर हम उसके विचार करेंगे कि ब्रह्मांड इतना विशाल है, हम छोटा एक घर बनाना चाहते हैं वो उसके लिए इतनी समस्या लगती है, कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम लिखना होता है उसके लिए इतनी समस्या होती है, तो पूरा ब्रह्मांड अगर बनाना है कितनी समस्या होगी उसके लिए। पर भगवान कैसे करते हैं, सोते सोते अपने सपने में हो जाता है। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, जो सारा प्रभुवा जी एक वार्तालाप में बताते हैं कि ये सारा जो ब्रह्मांड है महाविष्णु के सपने में चल रहा है सब कुछ। महाविष्णु योग निद्रा में सो रहे हैं, तो जो योग निद्रा है इसको भक्त सिद्धांत सुरेश को ट्रांसलेट भाषांतरित करते हैं क्रिएटिव स्लीप उसको बोलते हैं कि सृष्टि करने वाली निद्रा। अब इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है उसकी निद्रा सृष्टि करने वाली होती है, अगर होगा तो विनाश कर सकती है। कोई सपना आता है उसको और फिर उसको डर लगता है तो किसी को पीटता है, आजू बाजू में हाथ पैर हिलाता है, कुछ तोड़ फोड़ देता है ना, साधारण तो कुछ भी नहीं करते हम, कुछ नहीं करते सो जाते हैं तब। पर भगवान की जो निद्रा है वह क्या है, वह सृष्टि करती है, क्रिएटिव स्लीप, योग निद्रा। तो इसीलिए भगवान अगर सोते हुए सारे ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करते हैं, तो फिर उस भगवान के लिए आश्चर्य में क्या बात है। तो प्रहलाद महाराज भी, प्रहलाद महाराज के सातवें स्कंद के नौवे अध्याय में वे नरसिंहदेव को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं लगभग नौवे श्लोक से शुरू होते हैं, 50वें श्लोक तक चलती हैं। तो उसके अंत में जब वो भगवान को याचना कर रहे हैं तो 45वें श्लोक में बोलते हैं, यही भाव बोलते हैं, को अन्वत्र ते अखिल गुरो भगवान प्रयास उत्तारणे यस्य भव संभव लोप हेतो मूढ़ेषु वै महदनुग्रहार्थ बंधो किं तेन ते प्रिय जनान अनुसेमताम न। वो बता रहे हैं उसके पहले की प्रार्थनाएं में, पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि कैसे मैं मेरे सारे इंद्रियों से बंध गया हूं और जीव वही तो अच्युत विकर्षति मां वितृप्ता। वो आपने चित्र देखा होगा भागवतम में, कैसे एक व्यक्ति है उसकी हर एक इंद्रिय उसको अलग अलग दिशा में खींच रही है, आंख कहीं खींच रहा है, कान कहीं खींच रहा है, जीवा कहीं खींच रहा है, तो वो श्लोक इसके पहले आता है कुछ श्लोक पहले। तो वहां पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मैं इस तरह से बंध गया हूं इस भौतिक जगत में, तो कैसे आप ही मुझे छुड़ा सकते हो, तो आपके लिए मुझे छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए बता रहे हैं कि को अन्वत्र ते अखिल गुरु भगवान प्रयास, कि हे भगवान अगर आपको मुझे मेरा उद्धार करना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए बड़ा आसान काम है वो। कौन क्यों उत्तारणे यस्य भव संभव लोप हेतो, तो आप ये सारा भव है, ये सारी सृष्टि है, उसके सारा ब्रह्मांड इसकी सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, उसका विनाश करते हैं, अगर वो करने के लिए आपको कुछ समस्या नहीं है तो मेरे बंधन का विनाश करने के लिए क्या समस्या हो सकती है आपको। तो फिर भगवान कहते हैं, भक्षांश क्या को बताते हैं, आचार्य बताते हैं वहां पे कि भगवान कहते हैं कि ठीक है कोई समस्या नहीं है, पर मुझे करने के तुम्हारे बंधन को छुड़ाने की जरूरत भी क्या है। तो बोलते मूढ़ेषु वैव अनुग्रह अर्थ बंधो, कि जो महान लोग होते हैं महत, तो उनका स्वभाव होता है कि जिसकी कोई पात्रता भी नहीं है उस पर भी वो कृपा करते हैं। जैसे कोई बड़ा रईस व्यक्ति है तो उससे कोई उसको कोई नौकरी मांगने आएगा, नौकरी दे दो मुझे, तो फिर नौकरी जब चाहिए तो फिर वो उसकी पात्रता देखेगा, तुम्हारे तुमने क्या एक अनुभव क्या है, तुम्हारे डिग्री क्या है, तुमने क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारी प्रतिभा क्या क्या है। पर अगर कोई भीख मांगने आता है तो तुम्हारी डिग्री क्या है पूछता नहीं क्यों तो जो कृपा है वो कोई धंधा नहीं है, कृपा ये क्या है, भगवान एक तरह से भिक्षा दे रहे हैं हम सबको। तो इसलिए वो कहते हैं जो महान व्यक्ति है वो पात्रता नहीं देखते किसी की, उनके कृपा करने का स्वभाव होता है। मूढ़ेषु वै महदनुग्रह अर्थ बंधो, तो अर्थ बंधो जो इस दुनिया में अर्थ है बड़े दुखी है उनके आप बंधो। और फिर भगवान वहां पे बोलेंगे कि चक्रवर्ती बात बताते हैं कि पर इतने सारे लोग मुझसे कृपा याचना करने के लिए आएंगे, मैं तुम्हें क्यों कृपा दूं। तो बताते हैं किम तेन ते प्रिय जनान अनुसेवताम न, ते मेरी पात्रता है, मेरी पात्रता नहीं बोलते कि मेरा मेरी आप मुझे कृपा देनी चाहिए क्योंकि मैं आपके भक्तों की सेवा कर रहा हूं। किम तेन ते प्रिय जनान अनुसेवताम न, हाँ तुम मेरे भक्त की सेवा कर रहे हो, मैं जरूर आपको कृपा दे दूंगा। तो प्रहलाद महाराज नारद मुनि की सेवा कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बहुत सुंदर भाव है, पहले बता रहे हैं प्रहलाद महाराज की आपको किसी के भी भौतिक सृष्टि भौतिक बंधन का विनाश करने के लिए कोई समस्या नहीं है, और वो व्यक्ति की पात्रता भी नहीं है तो भी आप कृपा करने का स्वभाव है, और खास करके जो आपके भक्तों की सेवा कर रहे हैं उन पे आप कृपा कैसे नहीं कर सकते हो, तो कृपया आप मुझे आपकी कृपा दे दीजिए। किम तेन ते प्रियजनान अनुसेवताम नः। तो वास्तव में यह जो भाव है भगवान की कृपा एक तरह से सबके लिए है, पर खास करके जो उनके भक्तों की सेवा करते हैं भगवान उनकी ओर और कृपालु हो जाते हैं। क्यों ऐसे है? क्योंकि भगवान की इच्छा होती है कि अपने भक्तों की इच्छा पूरी करें। भगवान की इच्छा क्या होती है? अपने भक्तों की इच्छा पूरी करें। पर साधारणतया जो भक्त होते हैं वो ऐसी इच्छा नहीं करते हैं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करे, भगवान मेरी सेवा में लग जाए। ऐसा भाव भगवान भक्तों का कभी नहीं होता है। कि जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ऐसी इच्छा नहीं होती कि कृष्णा आके सबको बता देंगे मेरा प्रतिनिधि है, तुम सब इसके शरण में आ जाओ। तो भक्त भले भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, पर भक्त भगवान को अपनी सेवा में ही लगाना चाहते हैं, भले ही उनको सेवा करनी है। हम जानते हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसंग है, जब वो जप कर रहे थे यमुना के तट पे, वहां पे एक शेर आ गया, और जब शेर आ गया वो नदी के तट पे थे, और वहां पे वो शेर उनके बाजू में ही था, और सनातन गोस्वामी दूर से देख रहे थे कि भगवान कृष्ण वहां पे आ गए दंडा लेके, और वो रघुनाथ दास गोस्वामी बचा रहे थे। तो एक तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी की महिमा है कि भगवान स्वयं उनके रक्षण के लिए गए, अवश्य रक्षिवे कृष्ण। तो वो जप में मग्न थे, न तो उन्होंने शेर को देखा न भगवान को देखा, वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लीन थे। पर जब सनातन गोस्वामी देखा तो उन्होंने क्या कहा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो, मतलब आप भगवान से याचना कर रहे हो कि आप मेरी सेवा करो, पर आप आपके वैराग्य के नाम पे क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो मुझे कुटिया नहीं चाहिए, कुटिया नहीं चाहिए इसलिए आपको खतरा आ जाता है, तो भगवान को आपकी सेवा करने के लिए आना पड़ता है। तो भक्तों का भाव क्या होता है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, पर वो सेवा करने के लिए भगवान को हम नियोजित नहीं करना चाहते। जरूर हम भगवान से याचना करते हैं, पर ऐसे नहीं है कि भगवान को जादू कोई कार्य करके हमारे लिए मदद करे। भक्त सोचते चाहते हैं कि हमें परिश्रम करना चाहिए। तो फिर अगर भक्त को सेवा करनी है, भक्त की सेवा करने की इतनी इच्छा होती है कि वो व्यक्ति अकेले कभी उतनी सेवा नहीं कर सकते, कि भक्तों की इतनी इच्छा होती है कि जो महान भक्त होते हैं कि तो वो अकेले शारीरिक रूप से उतनी सेवा नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो भगवान की इच्छा है कि ये भक्त की इच्छा मैं पूरी करूं, पर वो भक्त शारीरिक रूप से एक व्यक्ति है, दो हाथ है दो आंखें है, शारीरिक रूप से वो बाकी सब जैसे ही है, जो श्रद्धा और भक्ति है वो बहुत ही अप्रतिम है, पर शारीरिक रूप से वो अकेले ही है। तो तभी वो अकेले कितनी सेवा कर सकते हैं, तो उनकी सेवा करने की इच्छा उनके क्षमता से बहुत अधिक होती है। तो इसीलिए अगर कोई जीवात्मा इस भौतिक जगत से कोई साधक हो वो भक्तों की सहायता करने लग जाता है, तो फिर भगवान उस जीवात्मा के प्रति बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अपनी इच्छा पूरी करने में मदद कर रहा है। मैं बता रहा हूं, समझ रहे हैं? भगवान यहां पे है, भक्त यहां पे है, भक्त इस दुनिया में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, पर भक्त नहीं चाहते कि भगवान इस दुनिया में आके जो मैं करना चाहता हूं वो कर पाऊं। तो फिर इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति आता है वो भक्तों की मदद करता है, जो महान भक्त की मदद करता है, तो क्या होता है, भगवान उसके कृतज्ञ हो जाते हैं कि तुम मुझे मेरे भक्त की इच्छा पूरी करने में मदद कर रहे हो। और इसीलिए वो व्यक्ति की पात्रता भी ना हो तो भी भगवान उसका शुद्धिकरण और तेजी से कर सकते हैं, उसको सक्षम बना देते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वो क्या कह रहे थे, मेरी पात्रता क्या है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए उन्होंने नहीं कहा यह कि मैं आध्यात्मिक जगत से आया हूं आप सबके उद्धार के लिए। प्रभुपाद जी कहा मेरे गुरुदेव ने आपको मुझे भेजा है। प्रभुपाद जी जो दो गीत उन्होंने लिखे जलदूत में, मार्किने भागवत धर्म और राधा रानी जदि कृपा हवे, तो जो गीत उन्होंने लिखे उसमें भाव था कि भक्त सिद्धांत सरोज ठाकुर जो है वो बड़े बड़े महान आचार्य है, और उनकी शक्ति से सारे जगत में जो हरिनाम फैल जाएगा। और वो भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, तो क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे मेरे गुरुदेव की इच्छा पूरी करने में मदद करो। और तभी हम जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो फिर हम देखते हैं क्या चमत्कार हो गया। तो प्रभुपाद जी ये श्रद्धा वो उनके जो मार्किनी भागवत धर्म जो गीत है उसमें दिखाते हैं। साधारणतया अगर कोई योद्धा बड़े कठिन युद्ध पे जा रहा है तो फिर उसकी विचारधारा क्या, कैसे मैं आक्रमण करूंगा, कैसे शत्रु को हराऊंगा, तो उसका उसने अगर अपना डायरी लिखा हुआ है तो बाद में अगर वो जीत जाता है तो कैसे तुमने योजना बनी, तुम्हारा क्या विचार था, वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रभुपाद जी एक बड़े युद्ध पे जा रहे हैं अकेले, क्या है सारे पाश्चात्य संस्कृति जो भौतिकवादी संस्कृति है उसके खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं। और प्रभुपाद जी की चेतना क्या है वो इस मार्किनेय भागवत धर्म में दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद वे बैक टू गॉड, जो भगवत दर्शन था छाप रहे थे, तो फिर उनको किसी ने बताया कि आप सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं, सत्स्वरूप महाराज ने किताब लिखी है कि उन्होंने लीलामृत कैसे लिखा। तो वो बताते हैं कि जो लीलामृत का दूसरा भाग था, दूसरा भाग मतलब जो अमेरिका में प्रभुपाद जी थे, तो वो लिखना बड़ा आसान था क्योंकि उससे काफी भक्त थे और भक्त से मिल पाए वो, और बाकी के सब भाग भी आसानी से लिख पाए वो, पर जो पहला भाग था वो लिखना बड़ा मुश्किल था। वो बोलते हैं कि मुझे लगभग 101 लोग मिले जो बताए थे, मैंने भक्तिवान स्वामी को आइडिया दिया कि आप अमेरिका में जाओ। तो जो कार्य हो गया उसके लिए श्रेय लेने के लिए बहुत से लोग वहां पे आ गए। तो फिर वो बोले इसमें से कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है वो समझना बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए वो पहला वॉल्यूम जो था वो लिखना उनको बहुत संशोधन करना पड़ा और फिर बाद में वो लिखे। तो इसे तभी जब प्रभुपाद जी उसके बाद में 62, 63, 64 तीन सालों में उन्हें पहला जो भागवतम का वॉल्यूम था पहला कैंटो उसको तीन वॉल्यूम में छापा, और फिर वो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को दिया, और फिर उन्होंने उनके साथ चित्र लिया, फिर उन्होंने दिया कि मेरी इच्छा है कि ये सारे भारत के सब लाइब्रेरियों में आ जाए। और फिर अभी भागवतम उनका रेडी हो गया तो प्रभुपाद जी बोले कि अभी अगर मुझे अमेरिका जाना है तो मैं जा रहा हूं, ना ऐसे नहीं सोच रहा हूं कि मैं बड़ा प्रचारक हूं सारे अमेरिका का उद्धार करूंगा। प्रभुपाद जी का भाव जो मार्किनेय भागवत धर्म में दिखता है वो क्या कह रहे हैं कि मैं भागवतम को लेके जाने वाला एक केवल कुली हूं, जो भागवतम है वह सबको परिवर्तित करेगा। इसीलिए अगर हम ये मार्किनेय भागवत धर्म अगर पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी की चेतना क्या है वो पूरे भागवतम के जो दूसरा अध्याय है पहले स्कंद का उसके जो श्लोक है श्रुणुताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन वो सब लंबी श्रृंखला है, उसी श्लोकों के 1.2.6 से 22 तक वो उस श्लोकों पे प्रभुपाद जी ने न्यू वृंदावन में बाद में बहुत प्रसिद्ध प्रवचन भी दिए। और जो धर्म जो आध्यात्म का राजमार्ग नाम की छोटी सी किताब है वह उन प्रवचनों पर आधारित है। तो ये जो श्लोक है संपूर्ण जो श्रीमद् भागवतम के 335 अध्याय है उनमें से सबसे अधिक किसी एक अध्याय से अगर प्रभुपाद जी श्लोक कोट किए हैं तो वो है पहले अध्याय का दूसरा स्कंद, पहले स्कंद का दूसरे अध्याय से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी का क्या भाव था कि अगर हम मैं भागवतम ले जाऊंगा और लोगों को भागवतम सुनाने को लगाऊंगा, लगभग भागवतम सुनेंगे तो क्या होगा, प्रभुपाद जी को कहते हैं इसी गीत में मार्किनेय भागवत धर्म में कि भागवतेर कथा सहित भवतार धीर सुने जदि काने बार बार। तो जो बंगाली है बड़ा हिंदी मराठी से समान ही है, तो क्या है भागवतेर कथा से ही तब अवतार कि हे प्रभु जो भागवत कथा है ये आपका ही अवतार है, और अगर कोई सुनी यदि बार बार, अगर बार बार कोई सुनता है तो क्या होता है धीर हैया, वो व्यक्ति धीर हो जाएगा, व्यक्ति जो रजस्तमो भाव जो है उस सबसे मुक्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी का भाव क्या था उसी गीत में, तबे यदि तब कृपा होए है तू की सकल ही संभव होए तुम्ही से कहूं तू की। तो प्रभुपाद जी अब जा रहे अकेले अमेरिका तो वो क्या उन्हें सोच रहे कि मैं ऐसे भाषण दूंगा कि सबको प्रभावित कर दूंगा, वो कह रहे तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की, यदि आपकी अहेतु की कृपा हो जाएगी तो फिर क्या होगा सकल ही संभव है, सब कुछ संभव होगा, सब कुछ संभव हो जाएगा, क्यों तुम्ही से कौतुकी। तुम्ही से कौतुकी मतलब आप हर प्रकार का चमत्कार कर सकते हो, सर्व आश्चर्यमय अच्युत यहां पे बताया रहे आप सब प्रकार का चमत्कार कर सकते हो। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वहां पे वो भाव व्यक्त करते हैं कि भागवतम का जो रस है ये इतना ऊंचा है रजतमो गुण के लोग है ये कैसे समझ पाएंगे, तो उसके लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं। अखिल जगत गुरु बचन से अमार, अलंकृत कोरी बार खमता तुम्हारा। ओले अखिल जगत गुरु, आप सबके गुरु हो, जो श्रवण करने वाले हैं मुझसे उनके भी आप ही गुरु हो, आप उनके हृदय में विद्यमान हो। और आप क्या करो, अलंकृत कोरी बार, आप मेरे जो शब्द है उनको अलंकृत करो, आप इस तरह से मुझसे वचन बोलो आओ जिससे कि वो समझ पाए। और वो प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं कि उनका नम्रता भी देखिए, वो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे शक्ति दो कि मैं ऐसे वचन बोलूं कि उससे उनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैं जो वचन बोलूंगा मैं ही बोलूंगा, पर जब मैं वचन बोलूंगा उसको आप अलंकृत कर दो, उसको आप अलंकृत कर दो, और फिर क्या होगा, उससे उससे परिवर्तन हो जाएगा उनका। अब प्रभुपाद जी वहां पर बताते हैं जो कि आनिया छे जदी प्रभु, अगर आप मुझे यहाँ पे लेके आए हो आपका कुछ जरूर कोई काम होगा, तो क्या क्या बोलते हैं, तो नचाओ प्रभु नचाओ से माते, काष्ठेर पुतली जन नचाओ से माते। कहते हैं प्रभु अगर आप मुझे यहाँ पे लेके आए हो तो जैसे कठपुतली होती जैसे नाचती है, जो कठपुतली नाचने वाला होता है उसके अनुसार आप वैसे ही मुझे नचाओ। तो प्रभुपाद जी जब अकेले गए उनको वास्तव में क्या होने वाला है कहाँ जाने वाले हैं कुछ भी पता नहीं था। तो जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए तो वहाँ पे उसके पहले रामकृष्ण मिशन का एक आश्रम वहाँ पे था, तो वहाँ पे उसके जो अध्यक्ष थे स्वामी निखिलानंद, वे प्रभुपाद जी से बोले कि जो अमेरिका में है यहाँ पे आप अगर मांस नहीं खाओगे और शराब नहीं पियोगे तो यहाँ पे जीवित ही नहीं सकते आप, यहाँ पे इतनी ठंडी है और यहाँ का वातावरण ऐसा है कि ये खाना बहुत जरूरी है, और अगर आप शर्ट पैंट नहीं पहनोगे, अगर आप चम्मच से खाना नहीं सीखोगे तो लोग आपको कुसंस्कृत मानेंगे, अनकल्चर मानेंगे, और कोई आपको सुनने को नहीं आएगा। तो हुआ क्या, वास्तव में बहुत लोग प्रभुपाद जी को सुनने को आ गए, उनको लोग उनके पास जा रहे सुनने को ज्यादा, जो उतने आते उतने ही आते रहे और कुछ हुआ नहीं। तो प्रभुपाद जी ऐसे बोले थे कि मैंने वो जो है उनका वास्तव में कैसे हो गया आश्चर्यजनक बात, जो हिप्पी लोग वहां पे थे वो कुछ तो भी दुनिया से अलग करना चाहते थे, और जब प्रभुपाद जी को उन्होंने देखा, श्री राधा रघुनंदन भगवान की, प्रभुपाद जी को उन्होंने देखा तो बोले कि ये तो इतने ऐसा व्यक्ति हमने कभी देखा ही नहीं है, तो वो उससे वास्तव में आकर्षित हो गए। तो अभी मैं जो उस समय के ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थिति है उसके बारे में थोड़ा वर्णन करूंगा, कैसे अगर हम कहते हैं कि भगवान योजना करते हैं भक्त के लिए तो उसका मतलब क्या है। अगर हम कहते हैं कि भगवान को प्रभुपाद जी को भगवान ने एम्पावर कर दिया, उन्हें शक्ति दे दी, शक्ति दी है, उसका मतलब क्या है, उसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। एक तो ऐसे नहीं है कि शक्ति दे दी मतलब कोई भी समस्या नहीं आती है, ऐसे नहीं है, समस्या आती है, पर जो वास्तव में असली एम्पावरमेंट, असली शक्ति क्या है कि समस्याएं आ जाए व्यत्यय आ जाए फिर भी व्यक्ति का दृढ़ संकल्प है वो कभी नष्ट नहीं होता है। आपने शायद पहले कभी पुराने जो पहले रामायण वगैरह आता था तो उस समय अगर वो दो योद्धा युद्ध कर रहे हैं तो इसे लक्ष्मण इधर से तीर छोड़ता है, इंद्रजीत इधर से तीर छोड़ता है, तो दोनों तीर का टक्कर होता है और फिर इंद्रजीत का तीर नीचे गिर जाता है, फिर लक्ष्मण का तीर आगे चलते रहता है, तो वैसे वो चित्र रूप से दिखाते थे। तो वैसे ही क्या होता है, भक्त का दृढ़ संकल्प होता है और दृढ़ संकल्प और जो दुनिया से समस्या आती है इन दोनों का टक्कर होता है, तो क्या होता है जब वो टक्कर होता है तो हमारा दृढ़ संकल्प गिर जाता है। पर जो महान भक्त होते, शुद्ध भक्त होते, क्या होते, समस्या आती है तो उनका दृढ़ संकल्प इतना बनाया रहता है कि समस्या गिर जाती है और वो आगे चलते रहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि प्रभुपाद जी के जीवन में समस्याएं नहीं आए। पहले जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए, हम जानते हैं बाद में बौरी में जाके रह रहे थे, बौरी मतलब जहाँ पे ऐसे चालिया होते हैं झोपड़पट्टी वैसे जगह में रहते, पर उसके पहले भी प्रभुपाद जी यहाँ पे रह रहे थे, वो वास्तव में एक जैसे हम जानते हैं प्रभुपाद जी कार्गो शिप से गए, कार्गो शिप मतलब मालगाड़ी जैसे होती है, वैसे मालगाड़ी से कोई अगर ट्रैवल करता है तो वो बिल्कुल उसमें सुविधा नहीं होती है, पर अमेरिका में जाके जो पहले रूम में जहाँ प्रभुपाद जी रह रहे थे वो वास्तव में एक गोडाउन था, तो उसमें कोई हवा आने के लिए जगह नहीं थी और उसमें कोई बाथरूम नहीं था, तो लंबा चल के वहाँ पे बाथरूम जाना पड़ा था और वहाँ पे बैठने के लिए भी अच्छी से जगह नहीं थी, और अगर कोई मिलने आया तो देखेगा ऐसे है ये अंधेरी कोठरी जैसे है, यहाँ पे क्या ज्ञान की ज्योति मुझे मिलने वाली है, कैसे लगेगा। और फिर वहां पे प्रभुपाद जी रहते हैं और वहां का जो वॉचमैन था उसने प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चोरी कर लिया, तो जो वॉचमैन संरक्षण कर रहे वही चोरी कर लिया, तो वास्तव में बहुत सी समस्याएं प्रभुपाद जी को आवा पे आ गए, पर फिर भी प्रभुपाद जी का दृढ़ संकल्प बनाया रहा। पर जो है भगवान भी योजना कर रहे थे उस समय। भगवान कैसे योजना कर सकते हैं हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते वास्तव में। तो प्रभुपाद जी, तो मैं तीन, जो एक धार्मिक, एक राजनैतिक और एक सामाजिक, तीन परिस्थितियां जो हुई वो जिसके कारण प्रभुपाद जी को सुविधा मिल गई जिससे कि प्रभुपाद जी प्रचार कर पाए। तो क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो प्रभुपाद जी का 2 महीने का वीजा था, 2 महीने का सिर्फ वीजा था, और 2 महीने के बाद उनको भारत में वापस आना पड़ा। तो वास्तव में अमेरिका की सरकार ये काफी स्ट्रिक्ट है, वो कोई गैरकानूनी रूप से कोई आता है तो रहने नहीं देते उनको। और अगर प्रभुपाद जी को अमेरिका से कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, कोई अमेरिका के नागरिक बोलेगा कि नहीं हमको यहाँ पे ये हमारे शिक्षक है, हमको इनसे फायदा हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे रहें। वास्तव में क्या कैसे होता है कि या तो उस व्यक्ति के पास नौकरी होनी चाहिए और वो कंपनी लेटर भेजते हैं कि हम इसका नौकरी में लगाया है इसीलिए इनको यहाँ पे रहने दो, या फिर कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होता है वो बोलता है कि मैं इस व्यक्ति की सिक्योरिटी लेता हूँ और अगर कुछ खर्चा आ जाएगा, कुछ हो जाएगा तो मैं उसको संभाल लूंगा, या फिर बड़ी प्रमाण में लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो फिर उनको जो जो उनको रहने का मौका देते हैं। जैसे कि ये भारत के सरकार की इतनी इतनी दुर्भाग्य की बात है कि प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हैं जो भारत में हैं अभी, पर अभी तो वो सब प्रभुपाद जी के शिष्य है जो इस्कॉन में अभी गुरुवर्ग है, वो सब बड़ा प्रचार कर रहे हैं और वो भारत लोगों को भारत संस्कृति सिखाते हैं, पर भारत की सरकार उनको भारत में नागरिक रहने की इजाजत नहीं देती। और अगर भारतीय सरकार को जाके बोलते हैं कि ये इतना सारे लोगों को प्रचार करे, इतने सारे गुरु है, बोले वो तो गुरु हमारे देश में बहुत है, आप जाओ अपने देश में प्रचार करो, ओ फिर वो हमें भारत की सरकार से परमिशन प्राप्त करने के लिए उनको दिखाना पड़ता है कि भौतिक स्तर पे आप क्या कर रहे हो। अगर फिर उनको बोलते हैं कि इतने सारे गरीब लोगों को हम खिला रहे हैं, इतनी सारी पाठशालाएं चला रहे हैं या हॉस्पिटल चला रहे हैं, हाँ हाँ जरूर रहो आप, जरूर रहो आप, तो क्या होता है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम। तो भारतीय संस्कृत सरकार जो है अगर कोई आध्यात्मिक कार्य करता है तो उसके लिए कोई उसको कोई कीमत भी नहीं देती है। तो प्रभुपाद जी जब इंदिरा गांधी से मिले थे तो तब पहला निवेदन उन्होंने किया, जब भी किसी राजनीतिक को मिलते थे तो क्या हो रहा था, जब प्रभुपाद जी जब मायापुर में मंदिर बना रहे थे, बॉम्बे में मंदिर बना रहे थे, तो क्या हर 2-3 या 6 महीने के बाद सब जो भक्त थे उनको भारत से बाहर जाना पड़ता था, नेपाल में जाओ या कहीं और जाओ और कुछ दिनों के लिए बाहर जाओ और वहां से वापस परमिशन लो और वापस भारत में आ जाओ। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि इससे वो जो सारी सेवाएं है, उस समय मोबाइल वगैरह नहीं था, अगर नेपाल में चले जाएंगे तो कोई कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था तभी, तो फिर सारा मैनेजमेंट जो था पूरा उसमें व्यत्यय आ जाता था, समस्या आ जाती थी। तो प्रभुपाद जी बड़े निवेदन करते थे। तो वैसे ही अमेरिका में किसी दूसरे देश के लोगों को आने को मौका देना बड़ा मुश्किल होता था, वो देते नहीं है। पर जो 1965 में प्रभुपाद जी, हम जानते हैं कि अगस्त में निकले, सितंबर में पहुंचे, सितंबर में पहुंचे, अक्टूबर एंड में, नवंबर के लगभग 12-15 तारीख को 2 महीने खत्म होके प्रभुपाद जी को भारत आना पड़ता था। तो उसी महीने के अक्टूबर के एंड में लगभग 29-30 अक्टूबर को जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट जॉनसन, उन्होंने एक लॉ पास किया और वो लॉ इमिग्रेशन भारतीयों के लिए ओपन कर दिया कि भारतीय लोग जितना चाहे उतना आ सकते हैं। तो फिर अभी ये कैसे हो गया किसी को पता नहीं। उसके कारण प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तभी कोई ज्यादा भारतीय लोग नहीं थे, पर अगर अभी जाओगे तो भारतीय लोग जो है अमेरिका के सबसे एक्टिव माइनॉरिटी में से माने जाते हैं, बहुत लोग हैं भारतीय वहां पे। तो क्यों, वो जो ओपन किया गया था उसके कारण हुआ था। तो वास्तव में जो गौड़िया वैष्णव का प्रचार था, प्रभुपाद जी से पहले एक राधाकुंड के बाबा जी थे, बाबा प्रेमानंद भारती नाम के, तो वे अमेरिका में प्रचार करने गए थे, 1911 में गए थे वो प्रचार करने को, 3-4 साल उन्होंने रहा और वहां पे थोड़ा बहुत प्रचार किया, 1900 कैसे तो भी परमिशन लेके रहे थे, 1915 में भारत अमेरिका सरकार ने बोला कि आप यहाँ चले जाओ अभी, और फिर चले गए और फिर जो आज प्रचार किया था सारा खत्म हो गया और 1919 गुजर गए। तो उसके बाद में कुछ भी प्रचार नहीं हुआ था। पर जो एक स्थायी रूप से अगर रह के प्रचार करना है तो वो जो राजनीतिक योजना हो गई, अभी प्रभुपाद जी भारत से जा रहे थे तो उनको कोई पता नहीं था कि यहाँ पे 2 महीने के बाद मुझे ऐसा लॉ पास हो जाएगा और वहां पर रहने का मुझे मौका मिलेगा। पर जब श्रद्धा से कोई व्यक्ति कार्य करता है तो भगवान कैसी योजना बताए बनाएगी इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और उसी तरह से तो ये एक राजनीतिक तरह से हो गया था, और फिर जो सामाजिक तरह से क्या हुआ गया था कि उस समय जो अमेरिका के युवा पीढ़ी थी वो भौतिक सुखों से बड़ी ही असंतुष्ट हो गई थी। तो वो जो उसको उस समय काउंटर कल्चर कहते हैं, काउंटर कल्चर मतलब जो संस्कृति है उसके विरुद्ध जाना। तो संस्कृति के साथ साधारण क्या भाव होता था कि आप पढ़ाई करो, फिर आप नौकरी करो, फिर आप विवाह करो, फिर आप आपका अच्छा करियर बनाओ, ऐसे बहुत। पर ये जो युवक थे वो उनको हिप्पी कहा करते, वो सारे संस्कृति के परे चले गए और वो कहने लगे कि इस सारे जीवन में क्या लगा कर रहा है। तो ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि 1940 में 40 से 44 जो दूसरा महायुद्ध हुआ उसमें जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ये सब जीत गए, पर उसमें जो युद्ध अधिकांश रूप से जो यूरोप में हुआ था, तो इसीलिए पूरा यूरोप उध्वस्त हो गया, फ्रांस उध्वस्त हो गया, इंग्लैंड भी उध्वस्त हो गया। तो इंग्लैंड उसके बाद में पूरा इंग्लैंड की शक्ति थी उसे पूरी खत्म हो गई। पर अमेरिका युद्ध में जीत गया, पर अमेरिका के क्षेत्र में कुछ युद्ध नहीं हुआ था वास्तव में। अमेरिका क्या कर रहा, बाकी सब देशों को वो सारे अस्त्र शस्त्र दे रहे थे और सारे सारे देशों से पैसा प्राप्त कर रहे थे। तो क्या हो गया, अमेरिका के पास बहुत पैसा आ गया, और जो पोस्ट वॉर जनरेशन थी, जो युद्ध के बाद में जो पीढ़ी थी, वो पूरे ऐशो आराम से रहने लग गई। और फिर उस पीढ़ी के जो पुत्र थे, पुत्र पुत्रिया थे, वो बचपन से ही ऐशो आराम में रहते, तो जो भी भौतिक सुख चाहिए बचपन से ही उनको मिल रहा था। और जो भौतिक सुख बचपन से मिल रहा है उसको जो भी उन्होंने अनुभव करना है वो सब अनुभव कर लिया, तो इसमें कुछ है ही नहीं, और कुछ होना चाहिए जीवन में। और फिर उस समय तो ऐसी परिस्थिति थी, उस समय प्रभुपाद जी वहां पे गए और वो सारे जो युवक थे वो अध्यात्म के बारे में खोज रहे थे। अगर कभी कभी हम सोचते कि प्रभुपाद जी को 1922 में भक्तिदानंद सेठ ठाकुर ने जो आदेश दिया, प्रभुपाद जी 40 साल तक क्यों नहीं गए। भगवान कृष्ण योजना बनाए कि जब अमेरिका के लोग सबसे अधिक परिपक्व थे तभी प्रभुपाद जी को उन्होंने भेजा। तो बराबर अगर प्रभुपाद जी 10 साल पहले 10 साल बाद में आते थे, भगवान कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, तो कभी भी शुद्ध भक्त अपनी शक्ति से प्रचार कर सकते हैं। पर जो ऐतिहासिक रूप से हम देखते हैं सामाजिक परिस्थिति बहुत ही अनुकूल थी तभी। अनुकूल मतलब ऐसे नहीं कि वो तुरंत प्रभुपाद जी आगे सबको दंडवत कर दिया, ऐसी बात नहीं है, पर वो आध्यात्मिक खोज में थे। फिर भी प्रभुपाद जी को कितने सारे समस्याएं वहां पे लेनी पड़ी, उस पर मैं अंत में आऊंगा। और तीसरी जो घटना थी, तीसरी जो परिस्थिति क्या है कि जो ये अलग अलग धर्म होते हैं उन सबके सिद्धांत अलग होते हैं। ऐसे हम कहते हैं कि अल्लाह, यहोवा, क्राइस्ट, कृष्णा ये सब एक ही है, ये सब एक ही भगवान है, पर बाकी सब धर्म ऐसे नहीं सोचते। अगर इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, वो क्या सोचते हैं कि हमारे भगवान ही अकेले भगवान है, और बाकी सब धर्मों के भगवान है वो क्या है, वो भगवान नहीं है, वो शैतान के रूप है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब मुसलमान लोग जो आते थे वो अगर किसी भी राज्य को जीत लेते तो सबसे पहले यहाँ पे मंदिर जाके मंदिर को उध्वस्त करते थे, क्योंकि वो नहीं सोचते कि ये मंदिर में हमारे ही अल्लाह है, वो सोचते हैं कि ये शैतान ने रूप लिया है लोगों को अल्लाह से गुमराह करने के लिए। तो इसीलिए शैतान के रूप को हमें विनाश करना चाहिए, तो ये उनका भाव होता है। तो उसके कारण तो वो साधारणतया दूसरे धर्मों के खिलाफ होते हैं, पर दूसरे धर्मों के प्रचारक है वो तो उनको तो शैतान के दूत मान लेते हैं, तो उनके खिलाफ बहुत होते हैं वो। तो ऐतिहासिक रूप से ये सब धर्म है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, इन तीनों को अब्राहमिक धर्म कहते हैं, ये बड़े ही संकीर्णवादी है जो दूसरे धर्मों का बिल्कुल सहन नहीं करते। पर जो आधुनिक प्रगति हो रही थी उससे वास्तव में समझ गया कि अगर हम ऐसा संकीर्णवाद रखेंगे तो हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। तो 1965 में ही प्रभुपाद जी अगस्त में गए, सितंबर में जो पोप जॉन पॉल टू थे जो कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन क्या था कि उन्होंने कहा उसमें कि बाकी सब धर्मों में ऑल दैट इज नोबल एंड गुड इन ऑल अदर रिलीजियंस वी एक्सेप्ट दैट ऑल्सो एज वैलिड, कि अगर बाकी सब धर्मों में भी अगर कोई और सत्य है हम उसको स्वीकार करते हैं। तो वास्तव में इससे क्या हो गया, बहुत से लोग वहां पे और ओपन हो गए और वो दूसरे धर्मों के बारे में जानने के लिए और वो उत्साही हो गए। और प्रभुपाद जी का अनोखी बात क्या थी कि उसके पहले जो सब लोग आए थे, जो सब अनेक भारत से गुरु गए थे, वो सब मायावादी गुरु गए थे। और जो मायावादी गुरु थे, जो जो, जो क्रिश्चियनिटी इस्लाम है, वो मायावाद मतलब वो भगवान के प्रति बड़ा ही भगवान के प्रति बड़ा अपराध मान लेते हैं, क्योंकि तुम कहते हो तुम भगवान हो, कितना बड़ा अपराध है ये। तो एक तरह से वहां पे जब अमेरिका में साधारण जो भी गुरुगण गए थे, वो सब बताए थे कि वास्तव में तुम कहते हैं, तुम्हारा धर्म कहता है कि हम सब भगवान के पुत्र हैं, इसीलिए हम सब महान हैं। हमारा धर्म कहता है कि हम सब भगवान ही हैं, इसीलिए हम महान हैं। तुम्हारा धर्म कहता है कि तुम सब, हम सब पापी हैं, हमारा धर्म कहता है हम सब शुद्ध हैं, हम सब ब्राह्मण हैं, हम सब भगवान हैं। तो ये ऐसा जो भाव था, ये इससे जो क्रिश्चियन लोग अमेरिका में अधिकतर क्रिश्चियन धर्म था, तो वो उनका हिंदू धर्म के प्रति बड़ा ही नकारात्मक भाव हो गया था। पर उसी समय प्रभुपाद जब उन्होंने कहा, जो पोप जॉन पॉल ने कहा कि वास्तव में हम दूसरे धर्म भी सत्य अच्छा है उसको स्वीकार करते हैं, उसी समय भगवान की वजह से प्रभुपाद जी वहां पे गए। प्रभुपाद जी बताए कि हम नहीं कहते हम भगवान हैं, हम कहते हैं हम भगवान की दासी है। और उन्होंने देखा कि वास्तव में उस समय तक हिंदू धर्म में मायावाद के अलावा कुछ और है, ये पता ही नहीं था लोगों को। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि शुद्ध भक्ति है जो भाव, और प्रभुपाद जी अब कहते हैं कि जीसस इज आवर गुरु ऑल्सो, जीसस जी हमारे भी गुरु है। तो उससे क्या हो गया, एक बहुत ही आश्चर्यजनक प्रभाव हो गया। तो बाद में ये क्रिश्चियन लोग भक्त नहीं बने, क्रिश्चियन जो पादरी वगैरह थे, क्रिश्चियन पंडित थे, वो भक्त नहीं बने। पर बाद में जब भक्तों को कुछ समस्या आ गई, लोग कह रहे कि आप ऐसे कुछ, तो उस समय इन सब लोगों ने सपोर्ट किया जब कोर्ट केसेस वगैरह हो गई। तो पॉइंट हम यहाँ बता रहे हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि क्योंकि ये सब राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक घटनाएं हो गई, उसके कारण प्रभुपाद जी इतना यशस्वी हो गए। पर ऐसे भाव नहीं है वास्तव में। जैसे नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मत जो बता रहा है कि प्रभुपाद जी बोले नचाओ मुझे, तो अगर कोई बहुत अच्छा नृत्य कर रहा है तो नृत्य करने के लिए एक अच्छा स्टेज चाहिए, स्टेज पर नृत्य हो सकता है। पर कितना भी अच्छा स्टेज हो, अगर व्यक्ति को नृत्य करने नहीं आता है तो कितना भी अच्छा स्टेज हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। तो भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी, वो भगवान की इच्छा के अनुसार नृत्य करने के लिए चले गए वहां पे। और जब वो चले गए तो भगवान क्या कर रहे थे उस समय, भगवान स्टेज बना रहे थे, सारी परिस्थिति भगवान संयोजित कर रहे थे, जिससे कि उनके भक्त एक अद्वितीय पद्धति से प्रचार कर सके। और जो प्रचार हुआ 10-11 सालों में, वो विश्व के इतिहास में अभी तक अद्वितीय है, किसी ने इस प्रकार का प्रचार नहीं किया है। बहुत से मायावादी गुरु भारत से गए थे, उन्होंने प्रचार किया, पर उनका प्रचार क्या था कि वास्तव में कोई सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं किया, कोई हृदय का परिवर्तन नहीं किया उन लोगों का, कोई बुरी आदतें उनसे छुड़ाई नहीं। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ स्वीकार करो कि आप भी भगवान हैं, वो तो पहले से लोग सोचते ही है, उसमें क्या बड़ी बात है स्वीकार करना। प्रभुपाद जी एक बार ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो वहां पे एक ऐसे लंबी टोपी और जादूगर जैसे होता है वैसा वेश पहना हुआ एक व्यक्ति आया था। तो प्रवचन के बाद में कहा उसने, प्रभुपाद स्वामी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, और अगले महीने फरवरी में मैं साबित करने वाला हूँ कि मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद ठीक है, सब लोग ऐसा ही सोचते, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वास्तव में जो मायावाद की विचारधारा है, वो जीवात्मा के मिथ्याहंकार को वास्तव में बढ़ाती है। तो इसीलिए मायावाद का प्रचार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों का है कि भगवान के शरण जाओ, क्यों जाओ शरण, एक बहुत लोकप्रिय एक प्रिय गुरु थे, अभी बड़े उन्हें कुछ स्कैंडल में आ गए, वो अभी बड़े कुख्यात हो गए। पर उसका वो गुरु क्या कहते थे, बहुत से गुरु आके कहे हैं अब तक कि वे भगवान हैं, मैं आया हूँ आपको बताने के लिए आप भगवान हो। तो अभी लोगों को ऐसे बताते कौन नहीं आएगा सुनने को, सब लोग आएंगे। तो मायावाद का प्रचार करना इतना मुश्किल नहीं है, पर शुद्ध भक्ति का प्रचार करना, लोगों को बताना आप सब भगवान के सेवक हो और सेवा में ही असला आनंद है, वह आसान नहीं है। वह जो प्रभुपाद जी ने किया, और न केवल एक ऐसा जो सिद्धांत था, तत्वज्ञान था, वह जीवात्मा के लिए प्रिय लगने वाला ऐसा सिद्धांत नहीं है, उसका प्रचार किया, न केवल उसका प्रचार किया, उसे हजार लोगों को परिवर्तित किया। प्रभुपाद जी ने परिवर्तित किया, सारे जो बुरी आदतें उसे छुड़ा दिया। और जो भगवद्गीता के अंत में बताया, सर्वधर्मान प्रत्यजमाम एकम शरणम भजो, प्रभुपाद जी की प्रेरणा से, भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा हजारों लोगों ने यह किया। तो यह सर्वाश्चर्यमय च्युते, यह भगवान की कृपा है। तो वास्तव में हम प्रभुपाद जी ने जो किया है उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर मैं भी मेरी जो परिस्थिति है उसमें सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प रखता हूँ तो भगवान योजना बनाएंगे, भगवान योजना बनाएंगे जिससे कि जो जो प्रचार है वो आगे बढ़ सके, जो प्रचार है वो भगवान सारी योजना बनाएंगे। तो भक्त सावंत महाराज कई बार मुझसे कहते हैं कि आई एम अ ड्रीमर, कि मैं बहुत सपने देखता हूँ, मुझे भक्त चाहिए कि जो सपने पूरे करने के लिए मदद करे। तो आप सबको, हम सबको ये मौका है कि उनके उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो इच्छा है उसमें हम अगर कुछ मदद करें तो भगवान की कृपा के द्वारा जो बाकी सब समस्याएं हैं वो चली जाएगी। और कैसे जाएगी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसके बारे में विचार भी करेंगे तो हम क्या होगा, हम हताश हो जाएंगे। तो एक श्रद्धा की बहुत सुंदर, श्रद्धा के अलग अलग परिभाषाएं हैं। श्रद्धा की एक परिभाषा है कि जो अगर कोई, मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ तो अगर कोई बताए मुझे कि अच्छा ये रास्ते पर पूरा रास्ते में अगर रोशनी होगी, यहाँ से निकलूंगा, अगर अंत तक कहाँ जाना है वो सारा रास्ता अगर मुझे दिखेगा तो मैं रास्ते पर जाऊँगा, तो ऐसे अगर हम बोलते हैं तो उसमें श्रद्धा कुछ है ही नहीं। श्रद्धा मतलब क्या, अगर सिर्फ मुझे एक पद आगे दिख रहा है तो मैं एक पद लूंगा और मैं विश्वास रखता हूँ कि अगला पद जो लेना है उसके लिए भगवान मदद करेंगे। सो फेथ मीन्स टू बी रेडी टू टेक इवन वन स्टेप व्हेन द फुल रोड इज नॉट विजिबल टू अस। पूरा रास्ता हमें दिख भी नहीं रहा है पर एक पद तो दिखता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो एक पद अगर मैं आगे लेता हूँ, उतनी श्रद्धा रखता हूँ तो क्या होगा, भगवान तभी आगे भी दिखा देंगे। तो अगर हम बोलते पहले अगर मैं भगवान के शरण में आ जाऊंगा तो फिर मुझे क्या सेवा मिलेगी, कहाँ रहूंगा, कैसे क्या करूंगा, क्या साहब अगर हम सवाल पूछेंगे तो फिर श्रद्धा की बात कहाँ है उसमें। वो तो फिर एक तरह से कोई धंधा करता है, मुझे क्या इंश्योरेंस मिलेगा, ये क्या होगा, वैसे हो गया वो। तो वास्तव में जो श्रद्धा मतलब एक कदम अगर आगे लिखने को हमको दिखता है, उतना तो जरूर दिखता है, सबको दिखता है, उतना एक कदम लेगी और एक कदम। प्रभुपाद जी ने वैसे ही किया, तो प्रभुपाद जी का ऐसे नहीं था कि हम कहते प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, जरूर शुद्ध भक्त है, पर ऐसे नहीं होता कि प्रभुपाद जी को सब कुछ पता था कि मैं अमेरिका में जाऊंगा, फिर इस व्यक्ति से मिलूंगा, फिर उस व्यक्ति से मिलूंगा, फिर हम यहाँ पर प्रचार करेंगे। प्रभुपाद जी कई बार योजना बनाते फिर बदलते थे कि इसमें समस्या आ गई, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। तो प्रभुपाद जी जरूर, उनको ये विश्वास था, जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से मंदिर है दुनिया भर में और सारे मंदिर भक्तों से भरे हुए हैं, तो ये प्रभुपाद जी का विश्वास था भगवान में, पर ये कैसे होने वाला है ये प्रभुपाद जी को पता नहीं था। वो प्रभुपाद जी एक पद आगे लेते गए, जो भी मौका भगवान दे रहे थे एक पद लेते गए, एक पद लेते गए, तो उससे क्या हो गया, फिर भगवान ने चमत्कार जैसे कर दिया। और मामम स्थम यही तदाश्चर्यम, तो आज हम देखते हैं तो प्रभुपाद जी ने किया वो एक चमत्कार के समान है, पर वास्तव में वो चमत्कार असली चमत्कार का था प्रभुपाद जी के हृदय में जो श्रद्धा थी भगवान के प्रति, जो अतूट जो दृढ़ संकल्प था वह चमत्कार है। तो हमारा हृदय में क्या होता है कि हम बहुत सोचते हैं कि मैं भी बहुत सी सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि बहुत अप्रतिम चीज़ हो जाएगी, पर उसके लिए प्रार्थना करने की जगह पे हम अगर प्रार्थना करके भगवान आप मेरे हृदय में अतूट श्रद्धा दें, श्रद्धा आ जाएगी, दृढ़ संकल्प आ जाएगा भगवान की सेवा करने का, तो बाह्य रूप से जो भी करना जरूरी है वो करने के लिए भगवान योजना बना देंगे, हमें बुद्धि दे देंगे वो, और फिर हम कर पाएंगे। तो अंतरंग रूप से जो श्रद्धा है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, भगवान कहते हैं कि मैं आपको बुद्धि दूंगा कि आप कैसे प्रगति कर सकते हो, पर उसके लिए क्या है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, तो आप मेरी प्रीतिपूर्वक भक्ति करो। मैं अंतिम एक विचार क्या बोलता हूँ, जो उत्साह निश्चय धैर्यात है, उपदेशामृत में बताया कि हमें उत्साह रखना चाहिए, निश्चय और धैर्य। तो क्या होता है, हमारा सेवा होती है और सेवा का फल होता है, तो हमारा जो धैर्य मतलब सब्र रखना, ओके आप करते रहो करते रहो, जब फल मिल जाएगा आ जाएगा फल। तो हमारा क्या होता है, हम सेवा के फल के लिए उत्साही रहते हैं और सेवा के लिए हम धैर्य रखते हैं, आराम से सेवा करूंगा पर अगर हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देखेंगे तो प्रभुपाद जी क्या, सेवा के लिए उत्साह थी, सेवा का फल 40 साल लग गए आने को, 43 साल लग गए पर वो उत्साह रखा उन्होंने, तो हम उल्टा कर देते, पर अगर हम सेवा के लिए उत्साह रखेंगे और फल जब भगवान चाहेंगे दे देंगे, तो भगवान जब देंगे तो एक अप्रतिम रूप से फल भी दे सकते हैं भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
Hare Rama Hare Rama Rama Rama